जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंध तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 28 एते च अंश कलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इन्द्र अरि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति निर्णयन्ति युगे युगे एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे माताजी एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते ये सब च तथा अंश पूर्णांश कलाह पूर्णांश के भी अंश पुंसः परम पुरुष के कृष्णः भगवान कृष्ण तो लेकिन भगवान भगवान स्वयं साक्षात इंद्र अरि इंद्र के शत्रु से व्याकुलम विचलित लोकम सारे लोक को मृडयन्ति सुरक्षा प्रदान करते हैं युगे युगे विभिन्न युगों में श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या अंशांश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य का दूसरा भाग। श्रील जीव गोस्वामी के कथानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में निहित हैं, और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द इसकी पुष्टि करता है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने स्रोत हैं। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी परम पुरुष नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द आश्रय तत्व के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। आश्रय तत्व कृष्ण अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनंत शक्ति से युक्त हैं और अपने अपने स्वरूपों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। अध्यात्म विषय के पंडितों ने आश्रय तत्व कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंश या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश तदेक आत्म से लेकर अवतार तक के उनके निजी विस्तार विष्णु तत्व हैं, और इनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न तो अवतार हैं न आवेश और न ही इन दोनों के बीच आते हैं, लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस जगत की बद्ध अवस्थाओं में इन गुणों का लेश मात्र ही पाया जाता है, और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है, और मनुष्य में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम से वह ब्रह्मा बन सकता है। स्वर्गलोक के दैवी जीव हरिधाम तथा महेश धाम में ईश्वर के निरंतर सानिध्य में रहते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% या इससे अधिक गुण विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्णलोक जाने का भागी बन जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वरकेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरहना परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम देख चुके हैं कि ये श्लोक जो एते चांश कलह पुंसह से प्रारंभ होता है, श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रीमद् भागवत का ये परिभाषा सूत्र माना जाता है। परिभाषा सूत्र वो श्लोक है जिसके द्वारा हम सारे ग्रंथ या शास्त्र को समझ सकते हैं सही तरह से। अन्यथा ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में, विशेष करके वैदिक साहित्यों में, ऐसे पाया जाता है कि अनेक श्लोक ऐसे होते हैं जिनके नाना अर्थ हो सकते हैं और सारे अर्थ सही हो सकते हैं एक ही साथ। और इतना ही नहीं, अनेक श्लोकों में ऐसे प्रतीत हो सकता है कि कोई विरोधाभास है, एक श्लोक में कुछ कहा गया है तो दूसरे श्लोक में कुछ और कहा गया है। और ऐसे भी हो सकता है कि अनेकों बार अनेक श्लोकों में या अध्यायों में हमें कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ही बात है, यहाँ की बात कुछ अलग ही है, कुछ एक एकता या एक मूल विषय नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए ऐसे परिभाषा सूत्र को जानना आवश्यक होता है। परिभाषा सूत्र ये उस ग्रंथ का बीज या सार होता है। परिभाषा सूत्र ग्रंथ में केवल एक बार आता है और दोबारा कभी वो दोहराया नहीं जाता, और विशेष रूप से ग्रंथ के शुरुआत में वो आता है। और इसके बाद जो भी उस ग्रंथ में आने वाला है उस सब को हम इस परिभाषा सूत्र के द्वारा सही तरह से समझ सकते हैं। ये परिभाषा सूत्र एक ऐसे सारे ग्रंथ के लिए नियम स्थापित करता है जहां की पहले नियम शायद नहीं दिखाई पड़ता था। सारे ग्रंथ को बांध लेता है ये परिभाषा सूत्र। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक के ऊपर इतना महत्व दिया है, और श्री प्रभुपाद जी ने भी काफी लंबा तात्पर्य लिखा हुआ है इस श्लोक के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि स्वयं शब्द का महत्व क्या है। भगवान के रूप अनेक हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया हुआ है, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्म, वैभव, प्राभव, विलास, प्रकाश, ऐसे अनेक उनके विस्तार हैं। परंतु इन सब के आदि श्री कृष्ण है। ये सब भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, श्री कृष्ण इनके मूल हैं। परंतु श्री कृष्ण के कोई मूल नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं के ही आश्रय हैं, स्वयं के ही मूल हैं। तो इसलिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है कि उनका कोई आदि नहीं है। वराह देव, मत्स्य भगवान, नृसिंह भगवान इत्यादि भगवान होकर भी उनके आदि श्री कृष्ण हैं। परंतु श्री कृष्ण के कोई आदि न होने के कारण, वही स्वयं अपने ही आदि होने के कारण यहां उनको स्वयं कह के बताया गया है, स्वयं भगवान। ऐसे प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ साथ प्रभुपाद जी ये व्याख्या भी कर रहे हैं कि श्री कृष्ण में जो दिव्य गुण पाए जाते हैं वो तो अनंत हैं, परंतु रूप गोस्वामी जैसे महान आचार्यों ने विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला है कि उनके 64 प्रमुख ऐसे दिव्य गुण हैं, और ये दिव्य गुण 100% मात्रा में पाई जाती हैं श्री कृष्ण में। परंतु अन्य जितने भी वर्ग हैं उनमें 100% ये गुण नहीं पाए जाते। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, उपदेश दी, तो उस दौरान उन्होंने इस विषय के ऊपर काफी विस्तार में चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन 64 गुणों में से जीवों में 50 गुण हो सकते हैं अधिक से अधिक, और ये 50 गुण अधिक से अधिक मात्रा में ब्रह्मा जी में पाए जाते हैं, उनसे कम मात्रा में अन्य जो देवता हैं उनमें पाए जाते हैं, और जब मनुष्य लोक में आते हैं पृथ्वी लोक पर तो और भी अत्यल्प मात्रा में पाए जाते हैं, और मनुष्य लोक में भी किसी में थोड़ा कुछ ज्यादा, किसी में कम, लेकिन मात्रा बहुत कम होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां ये 78% की बात कर रहे हैं। 78% ये अंक आया कहां से? 64। हाँ, 64 में से 50, तो कितना प्रतिशत हुआ? 78। इसलिए अधिक से अधिक जीव 78% भगवान हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान कभी नहीं हो सकते, जैसे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर ये 64 गुण 100% पूर्णतया हैं और जीव में कभी नहीं हो सकते पूर्ण, अधिक से अधिक ब्रह्मा जी में या किसी दिव्य स्तर को प्राप्त करने वाले जीव में 78% गुण वो हो सकते हैं, अर्थात 50 गुण। बिंदु बिंदु तया क्वचित, तो बिंदु बिंदु तया क्वचित मतलब कि बिंदु बहुत ही कम मात्रा में जीव के अंदर रहते हैं, और वो भी क्वचित कभी कभी प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक जीव में हर समय ये सारे 50 गुण रहेंगे, कम मात्रा में भी होते हैं तो कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और उसके बाद शिवजी हैं, शिवजी के अंदर अथ पंच गुणस्य गिरिशादिषु अंशेन गिरिशादिषु, कविराज गोस्वामी बताते हैं कि गिरिश जो शिवजी हैं उनके अंदर और अधिक 5 गुण पाए जाते हैं, और वो भी अंशेन, पूर्णतया नहीं लेकिन काफी मात्रा में। तो शिव जी के अंदर ये 50 गुण तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जीवों की तुलना में, लेकिन इसके अलावा ऐसे 5 गुण शिव जी के अंदर हैं जो ब्रह्मा जी में भी नहीं पाए जाते, 55। तो 64 में से 55 कितना प्रतिशत हुआ? 84%। इसलिए शिव जी एक दृष्टि से कहा जाए तो 84% अधिक से अधिक भगवान है, शिव जी भी भगवान नहीं हो सकते। और यहां तक कि भगवान नारायण या विष्णु, उनके अंदर शिव जी की तुलना में और भी अधिक 5 गुण हैं, 60 गुण। 55 तो है ही पूर्णतया, परंतु और 5 हैं जो शिव जी में भी नहीं पाए जाते। तो 64 में से 60 गुण कितना प्रतिशत हो जाता है? 93। तो नारायण भी श्री कृष्ण के 93% भगवान है वो भगवान की श्रेणी में। जो 60 से ऊपर जिनके गुण हैं वो भगवान की श्रेणी में माने जाते हैं, 60 से कम जो गुण हैं वो भगवान की श्रेणी में नहीं माने जाते। इसलिए शिव जी भी भगवान की श्रेणी में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर नारायण से भी अधिक और 4 गुण हैं, इसके बारे में कई बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए और अधिक दोहराएंगे नहीं। तो पूर्णतया श्री कृष्ण के अंदर ये 64 गुण होते हैं। तो पूर्णतया सारे गुण, सारी शक्ति आदि श्री कृष्ण में होती है, और कभी कभी वो जब विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं तो विशेष शक्ति उन्हें प्रदान करते हैं कोई विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए। परंतु आदि हैं श्री कृष्ण। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी इस बात को काफी विस्तार में समझा रहे हैं। अब अपने कृष्ण संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि कई लोग विरोध करते हैं इस बात का कि ये श्लोक पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक ये श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र है। वो कहते हैं नहीं, ये परिभाषा सूत्र नहीं है, क्योंकि यहां जो कहा गया है इसके विरुद्ध श्रीमद् भागवत में ही अन्य वाक्य हैं या अन्य श्लोक हैं। ये तो केवल एक श्लोक है जो कहता है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। आप इस एक श्लोक को लेके इसे परिभाषा सूत्र बना रहे हैं और आप उन श्लोकों को नहीं देख रहे हैं श्रीमद् भागवत में ही, जिसमें यह बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु से या नारायण से आते हैं और नारायण परम है और नारायण से श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं। आप उन श्लोकों को नहीं देख रहे हैं। तो पहला ये विरोध का विषय है। दूसरा विषय है कि श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य वैदिक ग्रंथों में भी ऐसे कई बातें बताई गई हैं जिससे ये साबित होता है कि भगवान नारायण या विष्णु प्रमुख हैं और उनसे अन्य अवतार आए हैं और इन अवतारों में श्री कृष्ण भी सम्मिलित हैं। तो फिर जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, इसीलिए तो परिभाषा सूत्र को जानना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे परिभाषा सूत्र को नहीं समझेंगे तो सारे श्रीमद् भागवत को तो क्या वेद ग्रंथों को भी हम समझ नहीं पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि श्रीधर स्वामी ने बहुत स्पष्ट बताया है कि यही श्लोक श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र है। हम श्रीधर स्वामी को मानते हैं इसलिए हम इस श्लोक को परिभाषा सूत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, जीव गोस्वामी ने फिर श्रीमद् भागवत के अन्य श्लोकों को भी प्रमाण के रूप में रख के साबित किया कि यही एते चांश कलह पुंसह श्लोक परिभाषा सूत्र है। ये एकमात्र श्लोक नहीं है जिसमें यह बताया गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, परम सत्य है। ऐसे अनेक श्लोक हैं। तो जीव गोस्वामी ने उनको भी कोट किया है। वो बताते हैं कि यदि श्रीमद् भागवत की तुलना हम एक सेना से करें तो हर एक सेना में कोई राजा या सेनापति होता है, तो ये एते चांश कलह पुंसह श्लोक ये राजा या सेनापति के समान है जो अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं अन्य सैनिकों का, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अन्य जितने भी सैनिक हैं रणभूमि पर वो उनके अधीन हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अन्य जितने भी श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं वो इस एक श्लोक के अधीन है। और जीव गोस्वामी फिर बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो ऐसे श्लोक हैं जिनको पढ़ के शायद किसी के मन में ऐसे विचार आए कि ये एते चांश कलह पुंसह श्लोक के विरुद्ध है, जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि किस दृष्टि से इन श्लोकों को देखकर भी हम ये समझ सकते हैं कि उन श्लोकों में और इस श्लोक में कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए हमें जीव गोस्वामी जैसे आचार्यों की आवश्यकता है शास्त्रों को समझने के लिए। अन्यथा शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे, अपने बुद्धि के बल पर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे। और आगे चल के जीव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य वैदिक ग्रंथों से भी बहुत प्रमाण सामने रखे जिसमें यह घोषणा स्पष्ट रूप से की गई है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है। तो ऐसे जीव गोस्वामी पाद अपने कृष्ण संदर्भ नाम के ग्रंथ में, जो कि षट संदर्भों से एक में से एक है, उसमें इतने दृढ़ता पूर्वक इस श्लोक की स्थापना परिभाषा सूत्र के रूप में स्थापित करते हैं कि इसका खंडन करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि खंडन करते समय उन्हें केवल वो जो कह रहे हैं उसकी स्थापना करने के तो श्लोक सामने रखने होंगे, परंतु इस श्लोक का खंडन और ऐसे श्लोक जो अन्य पाए जाते हैं शास्त्रों में उनका खंडन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में भी विश्लेषण किया है इस श्लोक का, आदि लीला के दूसरे अध्याय में, और व्याकरण के दृष्टि से वो विश्लेषण करते हैं। वो बताते हैं कि विषय होता है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, और इस विषय को कविराज गोस्वामी अनुवाद शब्द कह के संबोधन करते हैं, और फिर उस विषय के बारे में जो भी कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, जो अंग्रेजी व्याकरण जानते हैं। सब्जेक्ट मतलब विषय, और उस विषय के बारे में हम कुछ तो चर्चा करेंगे ना, कुछ तो कहेंगे, उसके कोई गुण होंगे, कोई लक्षण होंगे, कोई कार्य होंगे। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं जैसे एई विप्र परम पंडित, तो विषय क्या है? विप्र, उनके बारे में चर्चा हो रही है, और विधेय या जो उस विषय के बारे में चर्चा हुई है वो क्या है? परम पंडित। तो जब आप कहेंगे कि परम पंडित, इसका कोई मायने नहीं है जब तक कि आप कहेंगे कि कौन परम पंडित है, विप्र। तो पहले विप्र आना चाहिए, फिर विप्र की चर्चा हो सकती है कि वो परम पंडित है। ये विप्र है सभी लोग पहले से जानते थे, लेकिन परम पंडित है ये अब जान गए जब बताया गया कि ये विप्र परम पंडित है। तो पहले हमें विषय का स्पष्टीकरण करना होगा, फिर विधेय मतलब उस विषय की चर्चा होगी। तो ठीक उसी प्रकार से इस श्लोक में कहा गया है एते, एते च, मतलब ये 22 अवतार जिनका वर्णन हम अभी अभी किए हैं, और च अन्य जितने भी और अवतार हैं भगवान के जिनका उल्लेख हमने नहीं किया है, ये विषय है। और विधेय क्या है, इनके बारे में क्या चर्चा की गई है? अंश कलाह पुंसह, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु के अंश और कला हैं, और उनसे उत्पन्न होते, उनसे प्रकट होते हैं अवतार लेते समय। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, विषय कौन है? कृष्ण, और विधेय क्या है? भगवान स्वयं। तो ये कृष्ण की चर्चा हो रही है। जब विषय का स्पष्टीकरण हुआ है उसके बाद उस विषय से संबंधित विधेय या चर्चा का स्पष्टीकरण हुआ है कि ये कृष्ण स्वयं भगवान है। यदि आप केवल स्वयं भगवान शब्द लें तो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर आप नहीं कह सकते कि ये स्वयं भगवान वास्तव में नारायण है, नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान के पहले कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि सूत गोस्वामी कहना चाहते थे कि नारायण परम है और श्री कृष्ण उनसे उत्पन्न होते हैं, तो वो कहते नारायणस्तु भगवान स्वयं, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहते हैं। अन्य जो भी हैं कृष्ण के अतिरिक्त वो अंश हैं, और श्री कृष्ण अंशी हैं, जिनसे अंश उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण अवतारी हैं, जिनसे अवतार उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण अंशी हैं, जिनसे अंश उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे कविराज गोस्वामी काफी व्याकरण से दृष्टि के दृष्टि से भी विश्लेषण करते हैं। आगे चल के वो ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा जी जब विमोहित हुए, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में पाया जाता है ब्रह्म विमोहन लीला के दौरान, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की दशम स्कंद के 14वें अध्याय में, और स्पष्ट रूप से उन्होंने श्री कृष्ण को परम सत्य कह के घोषित किया। कौन से श्री कृष्ण को? जो कि वृंदावन में उस समय उपस्थित थे ब्रह्मा जी के सामने। किसी कारणवश श्रीपाद मध्वाचार्य ने इन दो अध्यायों के ऊपर टीका नहीं की। अपने भागवत की टीका में इन दो अध्यायों को उन्होंने छोड़ दिया, विशेष करके 14वां अध्याय, क्योंकि मध्व संप्रदाय में ब्रह्मा जी का स्थान बहुत ही विशेष है। तो कैसे ब्रह्मा जी यहां इस तरह से विमोहित हो गए, तो मध्वाचार्य ने यहां टीका की ही नहीं है, उसको छोड़ ही दिया है। और विशेष करके कविराज गोस्वामी और जीव गोस्वामी भी ब्रह्मा जी के इस एक श्लोक को कहते हैं, जिसमें यह साबित होता है कि वास्तव में नारायण श्री कृष्ण के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण नारायण के अंश हैं। ये 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मस्य अधिशाखिल लोक साक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। वो कहते हैं नारायणस्त्वं, हे श्री कृष्ण, आप ही मेरे पिता नारायण हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म तो नारायण से हुआ था ना, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल पुष्प के ऊपर उनका जन्म हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी को कभी कभी स्वयंभू कहते हैं, क्योंकि उनका कोई इस दुनिया का माता पिता नहीं है, उनके पिता माता प्रत्यक्ष साक्षात भगवान हैं, इसलिए वो स्वयंभू हैं। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने अब पहचान लिया कि उनके वास्तव में पिता ये जो बच्चे खड़े हैं सामने वो है, ये 5 साल के बच्चे हैं वही उनके पिता है। नारायणस्त्वम नहीं, क्या ऐसा नहीं है कि आप ही मेरे पिता हैं? कौन कह सकता है कि ऐसे नहीं है? सर्वदेहिनाम आत्मसी आत्म असी, आप ही सारे प्राणियों के अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में आप विराजमान हैं। अधीश अखिल लोक साक्षी, आप साक्षी हैं किनके? अखिल लोक, समस्त लोकों के अंदर जितने भी प्राणी हैं आप उनके अधीश हैं और आप उनके साक्षी भी हैं। नारायण अंगम, नारायण भगवान आपके अंग हैं, आपके अंश हैं, वही नारायण जिनके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ वो आपके अंश हैं। नरभू जलायनात, नर मतलब गर्भोदकशायी विष्णु परम पुरुष, और उनसे नरभू, भू मतलब जन्म लेता है जल, तो उनसे जो जल उत्पन्न होता है वो नार कहते हैं। नर से जो जल आता है वो नार है, उस नार में अयन या निवास करने वाले हैं नारायण। तो भगवान नारायण शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे होती है, नारायण भगवान वो है जो वहां अयन करते हैं, जो निवास करते हैं। तच्चापि सत्यम न तवैव माया, तो ये जितने भी सारे नारायण और विष्णु के रूप आपके हैं ये माया से सृजित नहीं होते हैं, ये परम सत्य है। तो इस श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी ये घोषित कर रहे हैं कि नारायण भी भगवान श्री कृष्ण के अंग हैं या उनके अंश हैं। तो ऐसे अनेक श्लोकों को कहते हैं जीव गोस्वामी पाद, और विशेष करके इस श्लोक को चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी भी कहते हैं। तो ऐसे कविराज गोस्वामी ने काफी विस्तार में दूसरे अध्याय में स्पष्टीकरण किया है कि श्री कृष्ण ही नारायण के उद्गम हैं, नारायण उनके विस्तार हैं। साथ साथ में कविराज गोस्वामी इसी दूसरे अध्याय में और एक बात कहते हैं, जैसे कि आपको पता है श्रीमद् भागवत के 10 विषय हैं, अत्र सर्गस विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। तो ये 10 विषय है। शुरुआत होती है सर्ग और विसर्ग से। सर्ग मतलब महाविष्णु की सृष्टि, विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि इत्यादि। ऐसे करते करते 9 विषय हो जाते हैं और फिर 10वां विषय है आश्रय। पहले 9 विषयों के जो आश्रय हैं वो हैं श्री कृष्ण। और श्रीधर स्वामी अपने टीका में बताते हैं कि ये आश्रय श्री कृष्ण है, नारायण नहीं, श्री कृष्ण। वो कहते हैं दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रितस्य विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। दशमे मतलब दशम स्कंध में दशमम लक्ष्यम, ये दिखाई पड़ता है 10वें स्कंध में। ये 10 लक्षणों का उल्लेख है। दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रितस्य विग्रहम, कि सबके जो आश्रित हैं, आश्रितों के जो आश्रित आश्रयस्य, आश्रितों के जो आश्रय हैं उनका वर्णन पाया जाता है। विग्रहम उनके जो रूप हैं वो कौन है, श्री कृष्णाख्यम, उनका नाम है श्री कृष्ण, जो कि परम धाम है, जगत धाम है, सारे समस्त जगतों का वो आश्रय है। नमामि तत्, मैं ऐसे आश्रय तत्व श्री कृष्ण को नमन करता हूं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और जो भी कोई तत्व हैं वो सब आश्रित तत्व हैं। जो पहले 9 तत्व हैं वो 10वें तत्व आश्रित तत्व श्री कृष्ण के आश्रित हैं। यहां तक कि एक तत्व इनमें से है अवतार, ईशावतार, ईशानुकथा, जो कि भगवान के अवतारों की कथा है। तो ये समस्त अवतार भी आश्रित तत्व हैं। तो जीवों की बात तो दूर है, ये सारी सृष्टि, ये मनो, ये सब आश्रित तत्व है और श्री कृष्ण ही है जो आश्रय तत्व है। तो 2 प्रकार के तत्व, आश्रित तत्व जो श्री कृष्ण है जो सबको आश्रय देते हैं, और अन्य जितने भी हैं वो सब आश्रित तत्व है, आश्रय तत्व और आश्रित तत्व। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है। तो इस श्लोक के संबंध में कविराज गोस्वामी ऐसे विश्लेषण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी इस श्लोक में बताया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और भगवान नारायण, विष्णु, मत्स्य, कूर्म आदि ये सब उनके विस्तार हैं, उनके अंश हैं, और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उनके विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए वो उतनी ही शक्ति, ऐश्वर्य आदि को प्रकट करते हैं। इसलिए हमारे लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए अच्छी तरह से, और ये याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इस श्लोक का दूसरा भाग है इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इसका अर्थ है कि ये सामान्य अवतारों के अवतीर्ण होने के उद्देश्य को बता रहे हैं। इंद्र अरि, अरि मतलब दुश्मन, देवताओं के जो दुश्मन होते हैं, जो असुर होते हैं, जब ये असुर लोग उपद्रव मचा देते हैं ब्रह्मांड के भीतर, व्याकुल करते हैं, विचलित कर देते हैं सभी को, और भक्त विचलित हो जाते हैं, मृडयंती युगे युगे, तो ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण कभी स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी उनके अंश प्रकट होते हैं, कभी उनके अंशांश अर्थात कला प्रकट होते हैं, कभी कभी उनके आवेश अवतार भी प्रकट होते हैं। तो ऐसे समय समय पर, युग युग में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण या भगवान, उनके अवतार, वो प्रकट होते रहते हैं। तो इन सब को हमें जानना आवश्यक है और विशेष रूप से इनके आदि कौन है वो भी जानना आवश्यक है। तो इस सृष्टि में, आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में, दोनों में मिलाकर अनेक वर्ग हैं। तो ज्ञान, सही ज्ञान का मतलब है ये समझ लेना कि ये विभिन्न वर्ग कौन से हैं। थोड़ी दिन पहले हम थोड़े भक्तों से बात कर रहे थे, ये बता रहे थे कि वैष्णव का मतलब क्या है। वैष्णव शब्द के अनेक परिभाषाएं हो सकते हैं, उनमें से एक परिभाषा ये है कि वैष्णव वो है जो जानता है कि कौन कौन है। इंद्र कौन है, उनका स्थान क्या है, शिव जी कौन है, उनका स्थान क्या है, जीव कौन है, उनका स्थान क्या है, ब्रह्मा कौन है, उनका स्थान क्या है, कल्कि आदि अवतार हैं, परशुराम आदि हैं, वो कौन है, उनका स्थान क्या है, शिव जी, नारायण, विष्णु, मत्स्य, कूर्म, उनका स्थान क्या है, राधा रानी का स्थान क्या है, लक्ष्मी देवी का स्थान क्या है, श्री कृष्ण का स्थान क्या है। इसलिए ये कोई बस बाल को काटने की बात नहीं है, ये सूक्ष्म बात है, परंतु भक्तों को ये जानना बहुत आवश्यक है। तत्व का स्पष्टीकरण जब होगा तब भक्ति हमारी और सुदृढ़ अवस्था में चलेगी, हमारी श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम आदि की वृद्धि अवश्य होगी। तो हम आभारी हैं श्रील प्रभुपाद जी के कि उन्होंने ऐसे सूक्ष्म और गहरे तत्व इतने साधारण भाषा में हम सबको समझाए हैं। नहीं तो भगवान को मानना मुश्किल बात है। अभी भगवान तत्व शब्द का तात्पर्य इतना गहरा है, वो हम कैसे जान सकते थे। साथ साथ पूर्व आचार्य हैं, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी जैसे, जिन्होंने की ऐसे स्पष्ट टीका की है, और चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार ये सारी बातें अब खुल गई हैं, उनका खुलासा हुआ है। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष बात है, उन बातों का खुलासा उन्होंने कर दिया जो इसके पहले छुपी हुई थी, इतनी स्पष्ट नहीं थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है? हाँ, इस कथा से, इस श्लोक से संबंधित प्रश्न कीजिएगा, और माइक आप ऑफ मत कीजिए, आप पास देते समय जैसे वैसे ही माइक को देते जाइए। हरे कृष्ण। बड़े सोच विचार करके आपने प्रश्न किया, अच्छी तरह से लिख के लाए हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब है आप बहुत गंभीर हैं आध्यात्मिक तत्वों को समझने के लिए। हाँ, प्रेरणा स्रोत तो भगवान ही है सबके हृदय में, फिर भी किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख, किसी को यश, किसी को अपयश, किसी को सफलता, किसी को असफलता, तो ऐसे क्यों है? उत्तर ये है कि हर एक की योग्यता अलग अलग होती है, योग्यता के अनुसार भगवान सबको अपने अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो उपनिषदों में भी बताया गया है कि भगवान अनादि काल से जीवों की इच्छा की पूर्ति करते आए हैं और करते रहेंगे। तो जीव की जैसी इच्छा है, भगवान वैसे साधन उसके लिए जोड़ देते हैं। तो कोई दुष्ट कार्य करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत तो भगवान उसे प्रेरणा देते हैं, ठीक है करो, तमगुण या रजोगुण के अधीन उसे कर देते हैं। फिर उन गुणों से प्रभावित होकर वो कार्य करने लगता है, परंतु इन कार्यों के फल को उसे भुगतना पड़ेगा, भगवान को नहीं, क्योंकि उसके इच्छा के अनुसार उसे वो प्रेरणा मिली है। प्रेरणा के बिना कोई व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। प्रेरणा आती है भगवान से और भगवान देते हैं प्रेरणा हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ, माइक जरा वहां दीजिए पीछे माइक। हाँ,
भगवान के जो अलग अलग नाम है उसमें वो भगवान की अलग अलग शक्ति है क्या, एक ही शक्ति है सब नाम में?
भगवान के अलग अलग नामों में अलग अलग शक्ति है क्या, या वो एक ही शक्ति है?
मतलब जैसे कि कोई बोले कि अकिन राम नाम नहीं है कि बराबर एक कृष्ण नाम है, वैसा भेद है?
अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसा है, मूल शक्ति तो भगवान की एक ही है, जैसे कि मूल भगवान एक ही है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है आप बताइए, क्या अंतर है श्री कृष्ण और श्री राम में? राम भगवान कृष्ण के अंश हैं। क्यों भगवान ऐसे अपने आप को अंश रूप में प्रकट करते हैं? अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए, भक्तों के अलग अलग भावों को स्वीकार करने के लिए। जैसे जैसे अलग अलग भक्तों की भावना रहती है वैसे ही भगवान अपने विभिन्न रूपों को स्वीकार करते हैं। तो श्री राम की रूप में भगवान की सेवा करने के लिए भक्त बहुत हैं, तो इसलिए श्री राम के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। ये भाव की बात है, ठीक है। तो अंतर दोनों में भाव का है। ये उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं, ये हमेशा हमें याद रखना है, घर के व्यक्ति और दफ्तर के व्यक्ति। जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थानों में जब रहते हैं तो अपने ही अलग अलग गुणों को प्रकट करता है। जो घर में रहते हुए वो गुणों को प्रकट करता है वो सारे गुण दफ्तर में नहीं कर सकता वो, और दफ्तर में जो वो गुण प्रकट करता है वो अवश्य घर के व्यक्ति में है लेकिन ज्यादा वो प्रकट नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे परिस्थिति में वो व्यक्ति है वैसे वैसे जो भी उपयुक्त गुण या लक्षण आवश्यक होते हैं वो वैसे प्रकट करते हैं। वही व्यक्ति जब कोई खेल खेलने जाता है तो वो अपने दूसरे प्रकार की शक्ति को प्रकट करेगा। घर वाले व्यक्ति में भी वो शक्ति है लेकिन वो उतना प्रकट नहीं करता वहां, ठीक है। तो वही श्री कृष्ण जब राम के रूप में प्रकट होते हैं तो एक अमुक प्रकार का भाव, अमुक प्रकार की शक्तियां जो उन लीलाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक है उनको प्रकट करते हैं। तो जैसे भगवान के विभिन्न रूप होते हुए भी वो एक ही हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान के विभिन्न नाम होते हुए भी वो एक ही हैं। तो तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के प्रमुख नामों में कोई अंतर नहीं है, परंतु रस के दृष्टि से या भाव के दृष्टि से अंतर है। श्री हरिदास ठाकुर ने भी बताया है कि भगवान के दो प्रकार के नाम हैं, एक है मुख्य नाम और दूसरा है गौण नाम जो मुख्य नहीं है। मुख्य नाम वो है जो कि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से संबंधित हैं, जो बहुत मधुर हैं, जैसे गोपी जन वल्लभ, भक्त वत्सल, गोपाल, गिरिवरधारी, और ऐसे लीलाओं, ऐसे नामों का उच्चारण करने से, चिंतन मनन करने से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। जो गौण नाम है वो ऐसे हैं जो कि सृष्टि से संबंधित हैं, भौतिक सृष्टि से, जैसे कि जगदीश्वर, परमात्मा, सृष्टिकर्ता, तो ऐसे नामों का उच्चारण करने से भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, लेकिन उसे केवल मुक्ति मिल सकती है, कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। संबोधन ये सब एक ही भगवान के, परंतु रस और भाव भिन्न होने के कारण गति अलग अलग होती है। तो इसी दृष्टि से हमें यह समझना चाहिए कि जब हम श्री राम का नाम लेते हैं तो एक प्रकार का भाव है, तो एक प्रकार की गति मिलेगी, श्री राम का संग हम प्राप्त करेंगे, और श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण का संग प्राप्त करेंगे, और दोनों ही शुद्ध भक्ति हैं, परंतु भाव और रस का अंतर थोड़ा सा है। इस दृष्टि से हमें नाम की भिन्नता को समझना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है। प्रश्न ये है कि विभूति और जो शक्त्यावेश जीव अवतार होते हैं वो भी क्या 78% तक ही गुण प्रकट करते हैं? 78 से ज्यादा नहीं, 78 से कम हो सकते हैं, लेकिन 78 से ज्यादा नहीं कर सकते। जितने उस शक्त्यावेश अवतार को शक्ति प्रकट करने की आवश्यकता है उतना ही शक्ति भगवान उस जीव में आविष्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जब आवश्यकता नहीं है तो भगवान क्यों देंगे? तो यदि 70% में ही काम चल रहा है तो भगवान 78 नहीं देंगे। जितना आवश्यक है उस शक्त्यावेश अवतार को अपने कार्य को करने के लिए उतना ही करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ,
दो प्रश्न। एक कि जो भगवान की एक्सपेंशन
विस्तार, हाँ,
विस्तार और अवतार कई बार इनको इंटरचेंज मतलब यूज किया जाता है, ऐसे अवतार को इनकार्नेशन का अवतार, तो इसमें जो फर्क है उसको थोड़ा विस्तार में बताएंगे। ये पहला प्रश्न।
सारे अवतार विस्तार है, परंतु हर एक विस्तार अवतार लेंगे ये जरूरी नहीं है। अवतार कौन है? जो अवतीर्ण होते हैं, जो भगवान के धाम से उतर के आते हैं इस सृष्टि में, उनको अवतार कहते हैं। वो भी असंख्य हैं। लेकिन विस्तार कौन है? जिन वो भगवत तत्व हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। जैसे अनंत कोटि अनगिनत वैकुंठ लोक वैकुंठ जगत में है, और हर एक वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के एक स्वरूप निवास करते हैं चतुर्भुज रूप में, उनके साथ में उनके अनगिनत शुद्ध भक्त हैं, जनार्दन वामन श्रीधर केशव त्रिविक्रम, हम जो तिलक लगाते हैं 12, वो तो प्रमुख है ही, उनके अलावा ऐसे अनेक नाम हैं। तो ऐसे आवश्यक नहीं है कि यही सब विस्तार यहां प्रकट हो जाएं, जब होंगे तो उनको अवतार कहते हैं। ठीक है, तो ये है अवतार और विस्तार में अंतर।
दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई मतलब आध्यात्मिक जीवन में कई ऐसे ऐसे सूक्ष्म कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको एक्सियम जैसे होते हैं, इनको कितना हमें पहले एक्सेप्ट करके फिर चलना है और अपने आप बाद में इनका साक्षात्कार होता है, या इनको कितना मतलब वो बैलेंस कहाँ पर है कि कितना इनको समझ के कितना समझा जा सकता है, कितना इनको एक्सेप्ट करके चलेंगे आगे और अपने आप इसका साक्षात्कार होता जाएगा।
भगवान ने हमें जितनी योग्यता दी है, जितनी बुद्धि दी है, उतना हमें समझने का प्रयास करना चाहिए श्रद्धा से। कहीं ऐसा न हो कि हमारे प्रयास के अभाव के कारण हम कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आता। हाँ, ये तो सही है कि भगवान को कोई भी पूर्णतया समझ नहीं सकते हैं, अनंत शेष भी नहीं समझ सकते, नहीं उनका वर्णन कर सकते हैं। तो भगवान को पूर्णतया समझना संभव नहीं है। परंतु जितना हमारे अंदर योग्यता है उतना तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल शिक्षित नहीं है, उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है और ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सकता कुछ, तो कम से कम सुन के जो पता चले उतना तो कम से कम जानने का प्रयास करना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं उनको अवश्य प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से बात नहीं चलेगी, साथ साथ में इसको जीवन में अमल करने का प्रयास करना चाहिए। हरि नाम जप और कीर्तन, वैष्णवों की सेवा इत्यादि। परंतु भागवत की खूबी यह है कि इन चीजों के बारे में केवल श्रवण करने से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। यदि समझ लीजिए कोई व्यक्ति जप भी नहीं कर रहा है और कोई सेवा नहीं कर रहा है, केवल आके सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, बड़े ध्यान से प्रेम से सुनता है, उसके अंदर भी बहुत प्रगति होगी भक्ति में। परंतु जब वो गंभीर हो जाएगा फिर उसे आचार्यों की बात माननी चाहिए, फिर हरि नाम करना चाहिए, बाकी सब करना चाहिए। परंतु ये भागवत श्रवण इतना शक्तिशाली है कि केवल अपने आप में वो हमें सिद्धि तक पहुंचाने में सक्षम है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक संतुलित कार्यक्रम दिया है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए हम केवल एक चीज को नहीं करते हैं। हम भागवत भी सुनते हैं, हम हरि नाम जप करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, वैष्णवों की सेवा भी करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा भी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो एक संतुलित कार्यक्रम हमें दिया है वो हमें करते रहना चाहिए, जिसमें ये सारी चीजें सम्मिलित हैं, फिर अच्छी तरह से हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। ठीक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, जैसे भगवान के इतने अवतार हैं तो इसका क्या कारण है कि जो दशावतार हैं उनका जो नियुक्ति का आधार या बाकी अवतार इसमें क्यों नहीं शामिल है? बुद्ध देव है, परशुराम है, तो और भी भगवान के अन्य अवतार है जो इनसे ज्यादा प्रभावशाली या शक्तिशाली है, तो ये दस अवतार का इनमें नियुक्त होना उसका आधार,
मतलब ये दस अवतारों की का लिस्ट क्यों बनाया गया है? ये वैसे जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित है अपने दशावतार स्तोत्र में। जो सबसे प्रसिद्ध अवतार हैं उनका उल्लेख जयदेव गोस्वामी ने अपने दशावतार स्तोत्र में किया है। और बुद्ध जैसे अभी हमारे इतिहास में तो अभी अभी हुए ना, इसलिए उनका उल्लेख उन्होंने किया, और आने वाले सालों में कल्कि अवतार आने वाले हैं, लेकिन इतिहास के महत्वपूर्ण अवतारों का उल्लेख उन्होंने किया है। ऐसे कई अवतार हैं जैसे हंस अवतार हैं इत्यादि, इनका वर्णन नहीं किया उन्होंने, केवल 10 प्रमुख अवतारों को उन्होंने चुना है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, केवल जयदेव गोस्वामी ने प्रमुखतः जैसे शक्त्यावश अवतारों को कम ही देखा। जैसे जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्तोत्र में शक्त्यावश अवतार कौन से हैं? परशुराम जी हैं, बुद्ध देव हैं, ऐसे 2-3 ही हैं, बाकी जो है सब विष्णु तत्व हैं, कृष्ण हैं, बलराम हैं, मत्स्य हैं, कूर्म हैं, वराह हैं, नरसिंह हैं, ये सब विष्णु तत्व हैं। अंतिम प्रश्न किसी का को? हाँ,
प्रश्न है कि कर्म को बौद्धिक स्तर से जाना यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इसका साक्षात्कार होना यानी रियलाइजेशन, इसमें क्या अंतर है और यह किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करता है?
बौद्धिक दृष्टि से भी यदि हम श्रद्धा पूर्वक हृदय पूर्वक सही गुरु शिष्य परंपरा में हम श्रवण करेंगे, उससे भी साक्षात्कार धीरे धीरे आ जाएगा। श्रवण का बहुत महत्व है, हमारी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। जितना हम समझ सकते हैं ठीक है, ऐसा नहीं है कि यदि हम नहीं समझ सकेंगे तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना समझ सकते हैं कम से कम उतना तो करना चाहिए, और साथ साथ साक्षात्कार के लिए हमें हरि नाम तो चाहिए ही चाहिए, और इन सब का पचन होने के लिए वैष्णव सेवा आवश्यक है, वो रुचि आने के लिए। यदि हमारे अंदर एक नम्र सेवा भाव है और हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तो फिर हम अवश्य सफल हो जाएंगे। ये दो चीजें, नम्र सेवा भाव और श्रवण कीर्तन करने का उत्साह, ये दो चीजें रहेंगी निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन में हम सफलता प्राप्त करेंगे। नम्र सेवा भाव हर दृष्टि से, कृष्ण की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए, और श्रवण कीर्तन के ऊपर जोर देना, हमारी साधना जप कीर्तन अध्ययन कथा इत्यादि। ठीक है, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण।
अभी जय जय गोस्वामी दशावतार स्तोत्र में कृष्ण का नाम उन्होंने नहीं लिया, मतलब बता दिया रामा के वर्ग उन्होंने हलधर लिया, कृष्ण का अवतार रूप नहीं लिया,
इसलिए वो तो उद्गम है, स्रोत है। उनके अवतार है वो, श्री कृष्ण के अवतार है। हाँ पीछे, कहाँ से हाथ ऊपर कीजिए, कहाँ से? हाँ तो आकाशवाणी है।
जैसे सत्यावेश अवतार में जैसे गुरु तरह परशुराम, इनका भी अलग अलग धाम है क्या उनके?
नहीं, सत्यावेश अवतारों के धाम नहीं, सत्यावेश अवतार अधिकतर जीव माने जाते हैं जो जिनको ये शक्ति विशेष रूप से प्रदान की जाती है। ठीक है, हाँ।
प्रश्न नहीं है मेरा, कि मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसीलिए कि ये श्लोक भागवत में भी है, मैं पढ़ा है, और ये श्लोक सत्संग में भी आया था, लेकिन भागवत पढ़ने से इतना महती नहीं मिला, सत्संग में भी आया था, इतना चर्चा नहीं आज इतनी मिली, इसलिए धन्यवाद।
धन्यवाद श्री प्रभुपाद जी को हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी कहा है उनके ग्रंथों से ही कहा है, तो ये है प्रभुपाद जी का श्रेय। सारे आधुनिक जगत को उन्होंने ये सब इन सब चीजों का खुलासा करके दिया है ना? इतने अनमोल रत्न है श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, इसलिए इनको हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण।
भगवान आत्मा में आत्म संतुष्ट है, खुद में संतुष्ट है, लेकिन फिर हम नित्य विस्तृत नारे अवतार लेते हैं, सृष्टि निर्माण करते हैं, सृष्टि का नाश करते हैं, जीवात्मा में विस्तार करते हैं, फिर जीवात्मा में गलत भेजना स्वर्ग भेजना, तो इतना सारा भगवान अगर आते रहते तो बाकी जगह अपना दुख भी भोगना नहीं पड़ता।
वो तो संतुष्ट है लेकिन हम नहीं है ना, ये समस्या है, इसलिए ये सब करना पड़ता है, नरक स्वर्ग पृथ्वी ब्रह्मांड सृष्टि का सृजन। हम सब संतुष्ट नहीं है, हम सब भगवान से भिन्न होकर भोग करना चाहते हैं, समस्या ये है। हाँ, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये प्रश्न आचार्यों ने भी चर्चा की है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान ने अपने आप को विस्तार किया ही क्यों, वो आत्माराम है तो जीवों को विस्तार करके फिर ये सब सृष्टि और ये सब क्यों किया, क्योंकि आत्माराम होते हुए भी वो अनंत भी है और उनका हर चीज अनंत है, उनके आनंद आनंदमयोभ्यासात वो भी अनंत है। तो आनंद की वृद्धि करने के लिए वो अपने आप को विस्तार करते हैं एको बहुश्याम, और फिर अपने अंशों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जिससे कि प्रेम आनंद का की वृद्धि हो। तो प्रेम और आनंद की वृद्धि के लिए वो ऐसा करते हैं। यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, फिर भी अनंत रूप से उनकी आनंद का संतुष्टि का वर्धन होते रहता है। ये है परम सत्य। परम सत्य का मतलब ये नहीं है कि वो आत्माराम इसलिए वो निष्क्रिय रहेंगे, उनके स्तर में क्रियाशीलता है आनंद की वृद्धि के लिए, अनंत रूप से ये आनंद की वृद्धि होती रहती है। और ये सब चीजें कल्पना के बाहर है, कैसे आनंद बढ़ते जाएगा, कभी आनंद का घटन नहीं होगा, कोई इसकी सीमा है? नहीं है। ये है भगवान, इसलिए भगवान को समझना इतना मुश्किल ही नहीं, संभव नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत तत्व की बातें जितना कुछ हम समझ सकते हैं समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।